भागवतम दशम स्कंध चौदहवां अध्याय श्री कृष्ण के प्रति ब्रह्मा जी की प्रार्थना श्लोक संख्या एक। श्री ब्रह्मवाच नौमी यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरितिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। आपके वस्त्र बिजली के समान दीप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंदर्य आपके गुंजा के बने कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंख से बढ़ जाता है। अनेक वन्य फलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी श्रृंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज जन्माष्टमी का पावन दिवस है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस। पिछले कई दिनों से हम ब्रह्म विमोहन लीला की कथा का श्रवण कीर्तन करते आए हैं और आज इस कथा को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। प्रसंग अब ये चल रहा है कि ब्रह्मा जी ने भ्रमित होकर जब ग्वाल बाल और वत्सों को चुरा लिया और उनके एक क्षण अर्थात पृथ्वी लोक के एक वर्ष के पश्चात जब वो वृंदावन लौट कर आए तो आश्चर्यचकित हो गए यह देखकर कि भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल और वत्सों को फिर से कहीं से उत्पन्न किया था और उनके साथ खेल रहे थे जैसे कि वो एक साल पहले खेल रहे थे। ब्रह्मा जी ने जाकर उस गुफे में देख लिया जहां उन्होंने ग्वाल बालों को और वत्सों को छुपाया था और फिर से कृष्ण के पास लौटकर आए और देखा कि दोनों जगह वही ग्वाल बाल और वही वत्स हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा अचरज हुआ कि ये कैसे हो गया कि दो जगह एक समय वही ग्वाल बाल और वही वत्स कैसे हो सकते हैं। तब उनको समझ में आया कि जिस व्यक्ति को वो एक साधारण ग्वाल बाल समझ रहे थे वो साधारण ग्वाल बाल न होकर वास्तव में परम भगवान श्री हरि हैं। उस समय अपने भीषण अपराध का एहसास हुआ ब्रह्मा जी को और बहुत पश्चाताप करने लगे और उस समय थोड़े भयभीत हुए, शर्मिंदा हुए और ऐसी भावना अपने हृदय में रखकर अपने हंस वाहन से उतरे और दंडवत प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को। ऐसे लग रहा था मैं मानो कि एक स्वर्ण का डंडा नीचे पृथ्वी पर गिरा हुआ है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि आमतौर से जो देवी देवतागण हैं, वो पृथ्वी लोक का स्पर्श नहीं करते हैं। जब पृथ्वी लोक पर आते हैं तो जमीन से 6 इंच ऊपर खड़े रहते हैं हवा में, क्योंकि ये उनके लिए स्टेटस की बात है। क्योंकि अगर वो पृथ्वी का स्पर्श करें तो दूसरे मनुष्यों की तरह, प्राणियों की तरह हो जाएंगे, क्योंकि वो सिद्ध कराना चाहते हैं कि वो कोई विशेष प्राणी है, इसलिए हवा में खड़े रहते हैं। और इस तरह से अगर कोई देवी देवता और मनुष्य पास पास में बैठे हों या खड़े हों, तो हम देवी देवता को पहचानने के लिए ये एक लक्षण है कि वो हवा में खड़े रहते हैं। और जब कृष्ण कथा होती है, कृष्ण नाम का संकीर्तन होता है, तो देवी देवता भी उपस्थित हो जाते हैं वेश बदलकर। तो अभी आपस में बाएं दाएं देखिए, कोई ऊपर हवा में तो नहीं बैठा है, पहचान पाएंगे पास वाला देवता है या देवी है या हमारे ही बेलगाम के भक्त। कभी कभी देवी देवता जो है वो उन ग्वाल बालों का वेश पहनकर आते थे जो ग्वाल बाल उस दिन नहीं आए थे लीला करने के लिए। हो सकता है जो भक्त नहीं आए हैं यहाँ पर, उनका वेश स्वीकार करके कोई देवी देवता बैठे हों। तो खैर, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करना आरंभ किया, बड़े सुंदर प्रार्थना किए। ये हैं ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। आप सबको दिखाई पड़ रहा है, छोटे से नन्हे मुन्ने ग्वाल बाल खड़े हैं, उनको पता नहीं चल रहा ये कौन है। ये बड़ा आदमी है, तेजस्वी है, स्वर्ण रंग का है, 4 सर है इसके, हमने तो कैसे कभी नहीं देखा ऐसे 4 सरों वाला आदमी मेरे सामने आके सर झुका रहा है, हाथ जोड़ रहा है, दंडवत कर रहा है, आंखों से आंसू बह रहे, न जाने क्यों रो रहा है, क्या हो रहा है। मैं तो मेरे ग्वाल बालों को ढूंढ रहा हूं, मेरे दही चावल भी अभी तक मैंने समाप्त नहीं किया, और मेरे वत्स कहां चले गए वन में, और मैं इधर खेल रहा था, भोजन ले रहा था, अचानक ये आदमी कहां से आ गए, क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कुछ प्रार्थना करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ऐसे भ्रमित हो गए थे, बिल्कुल डावाडोल हो गए थे कृष्ण भगवान के इस सुंदर रूप को देखकर। आश्चर्य की बात नहीं है, कौन सोच सकता है कि भगवान एक 6 वर्ष के ग्वाल बाल की तरह वन में बाएं हाथ में दही चावल खा रहे होंगे और अपने मित्रों के साथ में उपहास और हंसी मजाक कर रहे होंगे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरा मन तो दामाडोल हो गया, मैं तो भ्रमित हो गया, पूरी तरह से भगवान की माया में फंस गया और मेरे आराध्य देव को मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन दूसरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो सबक सीख गया, लेकिन अभी मुझे ऐसे प्रार्थनाएं अर्पण करने चाहिए जिससे कि सारे ब्रह्मांड के हर एक जीव जो है वो समझ जाए कि प्रभु कौन है, कि वो मेरे तरह भ्रमित न हो जाए इस छोटे से ग्वाल बाल को देखकर। इसलिए अपने हृदय की बात प्रार्थना के रूप में ब्रह्मा जी व्यक्त करने लगे। और ब्रह्मा जी अभी भगवान का परिचय दे रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे ग्रंथ मिले हैं, हमें एक ऐसा धर्म मिला है, सनातन धर्म, ऐसा ग्रंथ मिला है जैसे श्रीमद् भागवत, जिसमें कि हमें भगवान का पूरी तरह से पहचान हमें दिया गया है। अन्य बहुत धर्म है, लेकिन इस गहराई में, इस निकटता से भगवान की पहचान किसी भी धर्म में या ग्रंथ में नहीं की जाती जितना कि श्रीमद् भागवत में। कई बार लोग अलग अलग धर्मों में ये तो बताते हैं कि भगवान महान हैं, भगवान शक्तिशाली हैं, भगवान कृपालु हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की है, ये सब चीजें भगवान के बारे में बताते हैं, लेकिन भगवान के सौंदर्य, भगवान के ऐसे सुंदर कार्यकलापों का वर्णन और किसी भी शास्त्र में नहीं आता, और इतने विस्तार में वर्णन है, भगवान के हर एक अंग का वर्णन, भगवान के हर एक आभूषण वस्त्र का वर्णन, भगवान के वाक्यों का वर्णन, भगवान के मित्रों का, उनके धाम का वर्णन, ये सब चीजें बहुत दुर्लभ होती हैं। इसलिए हमें इन प्रार्थनाओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। प्रार्थना बड़ी लंबी है, लेकिन इस पूरी प्रार्थना को आज हम अच्छी तरह से नहीं सुन पाएंगे, नहीं तो जन्माष्टमी बरात के 12 बज जाएंगे इधर सुनते सुनते, क्योंकि ब्रह्मा जी की प्रार्थना है ही इतनी सुंदर और आचार्यों की टीकाएं भी इतने सुंदर हैं। तो आइए, ब्रह्मा जी जो हमें भगवान श्री कृष्ण से परिचय करा रहे हैं, हम भी भगवान से परिचित हो जाएं कि कौन है ब्रह्मा जी के आराध्य देव। तो यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नौमी ईडिय, मैं आपका प्रणाम करता हूं सर्वप्रथम, और फिर वर्णन करते हैं, अभ्र वपुषे, आपका वपुह, आपके जो शरीर है दिव्य शरीर, उसका रंग काले बादल की तरह है, इसलिए भगवान का नाम है घनश्याम। और तड़ित अंबराय, और बिजली की तरह, बिजली के रंग के आपका वस्त्र है पीतांबर। गुंजावतम स, जो कान में कुंडल पहने हैं आपने, गुंज के बनाए हुए हैं, और वो इस तरफ उस तरफ हिल रहे हैं। परिपिच्छ, अपने केश में आपने मोर पंख लगाया हुआ है। लसन मुखाय, आपका मुखारविंद बड़ा तेजस्वी लग रहा है, प्रकाशमान लग रहा है। वन्य सृजे, आपने गले में एक वनमाला पहनी हुई है, उस वनमाला का नाम है वैजयंती माला। कवल, मतलब आपके बाएं हाथ में कर कमल में आपने वही दही चावल रखा हुआ है। वेत्र, विषाण वेणु, वेत्र मतलब उनको गाय चराने वाली जो लाठी होती है वो, विषाण मतलब श्रृंग, भैंस के सिंह का बनाया हुआ बाजा जो ग्वाल बाल बजाया करते हैं, वेणु बांसुरी। लक्ष्मश्रिये, ये आपके ऐश्वर्य के सौंदर्य के लक्षण हैं। मृदु पदे, पशुपांग जाय, पशुपा मतलब पशु पालन करने वालों में से जो राजा हैं, नंद महाराज के तनया अंग जाय, उनके पुत्र। तो हे नंद सुता, मैं आपको दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ, कृपा करके मेरे इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें। अब ब्रह्मा जी को अच्छा सबक मिल गया था। ब्रह्मा जी ने तो अपनी पूरी माया शक्ति लगाई, पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन भगवान ने अपने अंश मात्र, लेश मात्र अपनी शक्ति से, माया शक्ति से ब्रह्मा जी के माया शक्ति का ऐसा प्रतिकार किया कि ब्रह्मा जी बिल्कुल चकित और आश्चर्य में पड़ गए। और यहां पर उस भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हो रहा है जो कि बड़े बड़े देवी देवताओं को भी भ्रमित करते हैं, क्योंकि भगवान की तरह बिल्कुल दिखते नहीं है वो। जब साधारण व्यक्ति को आप कहिए भगवान, तो उसके मन में एक ऐसे विचार आता है कि भगवान कोई बड़े आदमी होंगे, बहुत शक्तिशाली आदमी होंगे। कोई ये नहीं सोचता कि भगवान एक नाजुक कोमल 6 साल के बालक भी हो सकते हैं, या उससे कम उम्र के भी बालक जो कि माखन चोरी कर रहे हैं। तो यहां भगवान श्री कृष्ण की विशेषता ये है कि उन्होंने अपने आप को ऐसे सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है अपने भक्तों के सामने। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपके इस सुंदर शरीर को समझ नहीं सकता, इसका अनुमान मैं लगा नहीं सकता। तो जब मैं अनुमान नहीं लगा सकता तो भले दूसरे कैसे लगाएं, ये तो असंभव है। भगवान के दिव्य शरीर को समझना वाकई बहुत कठिन है। बड़े बड़े दार्शनिक योगी ज्ञानी भी समझने का प्रयास कर चुके हैं लेकिन वो असफल रहे। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हालांकि मेरा मन भौतिक चीजों से बिल्कुल निरासक्त है, सारे भौतिक ब्रह्मांड से मैंने मेरे मन को खींच लिया है, मन को स्थिर कर लिया है, और इस अवस्था में भी मेरा मन भ्रमित हो रहा है आपका चिंतन करके, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको। तो देखिए ब्रह्मा जी की दशा क्या है, और आपका ये जो सुंदर रूप है इसका प्राकट्य केवल इसलिए है कि आपके शुद्ध भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब आपका ऐसे कुमार रूप, पौगंड रूप, ऐसा बाल रूप देखकर ब्रह्मा जो सर्वश्रेष्ठ जीव है ब्रह्मांड में, मैं भ्रमित हो रहा हूं, तो दूसरे लोग भ्रमित होंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे बताया जाता है, ब्रह्मा जी खुद अपने ब्रह्म संहिता प्रार्थना में बताते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चरम जगन्ति। वो कहते हैं कि भगवान श्री हरि अपने अंग के किसी भी अंग से दूसरे किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं, बराबर है। जैसे वो अपने आंखों से देख तो सकते हैं लेकिन सुन भी सकते हैं, अपने जिह्वा से आस्वादन कर सकते हैं, बोल सकते हैं लेकिन सुन भी सकते हैं, अपने स्पर्श से वो स्पर्श तो कर सकते हैं अपनी त्वचा से लेकिन देख भी सकते हैं अपनी उंगली से। तो ये है भगवान, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है, हमारे लिए ऐसा नहीं होता, हमें कानों से ही सुनना पड़ता है लेकिन वो भी कभी कभी नहीं सुनते, आंखों से देखना होता है लेकिन फिर भी वो ठीक से नहीं देखते। तो भगवान के दिव्य स्वरूप का मतलब ये है कि भगवान किसी भी अंग से किसी भी दूसरे अंग का कार्य संपन्न कर सकते हैं, ये है भगवान। लेकिन फिर भी उनके रूप में ऐसे अंग हैं, आंख हैं, कान हैं, और इसी रूप की नकल में मनुष्य बनाया गया है, क्योंकि हम भौतिक हैं इसलिए हमें वो लक्षण या वो गुण भगवान के जो है वो नहीं है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ी सुंदर टीका करते हैं, कहते हैं कि ये जो वर्णन है वो अलग अलग भगवान के अवतारों को लागू होता है, लेकिन जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो कि इन सारे अवतारों के उगम स्थान है, वो केवल अपने आंखों से ही देखते हैं, वो केवल अपने कानों से ही सुनते हैं, वो केवल अपने जिह्वा से बोलते हैं, आस्वादन करते हैं, अन्य विष्णु तत्वों की तरह नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भूमिका निभाने नहीं आए हैं, वो एक साधारण बालक की भूमिका निभाने आए हैं। इसलिए जैसे बालक होता है, जैसे साधारण मनुष्य होता है, वैसे ही उनकी इंद्रियां काम करती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक साधारण बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्वों के आंखों से देख सकते हैं, विष्णु तत्व क्यों, एक साधारण प्राणी एक चींटी के आंखों से भी देख सकते हैं, देवी देवता के आंखों से देख सकते हैं, हम सबके आंखों के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण एक साधारण बच्चे की तरह ऐसे लीला कर रहे हैं, ये उनका ऐश्वर्य है, और इस ऐश्वर्य में उनका माधुर्य है। अब ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया है, आदि कवि मतलब सबसे पहले वैदिक ज्ञान को जानने वाले, लेकिन फिर भी साधारण वैदिक ज्ञान को पूरी तरह से जानने के बाद भी वो भगवान श्री कृष्ण को जान नहीं पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने सारे वेदों को जान लिया, सारे उपनिषदों को जान लिया, साधारण जो वैदिक ज्ञान है उसको जान लिया, लेकिन फिर भी इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो श्री कृष्ण को नहीं जान पाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण को जानने के लिए केवल भक्ति चाहिए। साधारण वैदिक ज्ञान भी इसके लिए काफी नहीं है। वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः, वेदों को पढ़ने का उद्देश्य, वेदों को वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने का उद्देश्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण के इस सुंदर रूप को जानें। इसलिए जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जानता नहीं है
उसका सारा वैदिक ज्ञान निष्फल है, व्यर्थ है। और ब्रह्मा जी आगे चल के एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कह रहे हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक को कई बार कहा करते थे, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त्य एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुति गतां तनुवान मनोभिर ये प्राय सोचित चितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो व्यक्ति इस ज्ञान मार्ग को त्याग कर अपने स्थान में स्थित होकर केवल आपके श्रवण कीर्तन के मार्ग में लग जाता है और भगवान के भक्तों के मुखारविंद से इन कथाओं का श्रवण करता है और तन अपने वपुह मतलब तन, वाक मतलब अपने वचन, अपने वाणी और अपने मन से वो इन कथाओं को सम्मान करता है, वो व्यक्ति आपको बहुत जल्दी जीत सकता है। हालांकि आप अजित हैं, आप जीते नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति आपको जीत सकता है। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यहां जो शब्द का प्रयोग किया गया है, तनुवान मनोभिर, अर्थात अपने तन से, अपने वचन से और अपने मन से भगवान को जीत सकते हैं, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि किस तरह से वो अपने शरीर से भगवान को जीत सकते हैं। अपने शरीर से इस तरह से जीत सकते हैं कि वो भगवान के चरण कमल का स्पर्श कर सकते हैं। अपने वाणी से कैसे जीत सकते हैं, जब वो कृष्ण को बुलाते हैं तो कृष्ण चले आते हैं। और अपने मन से कैसे जीत सकते हैं, जब वो भगवान का स्मरण करते हैं तुरंत भगवान वहां आ जाते हैं। और जहां तक अभक्तों का सवाल है, वो अपने शारीरिक बल से, अपने मन से, अपने वाणी से कभी भी नहीं जान सकते। और सनातन गोस्वामी आगे बताते हैं कि जब ऐसे शुद्ध भक्त भक्ति करते हैं तो वो भगवान के शरीर को, भगवान के मन को और भगवान के वाणी को भी जीत लेते हैं। भगवान के शरीर को कैसे जीत लेते हैं, क्योंकि भगवान बाध्य होते हैं अपने भक्तों के पास में रहने के लिए। जहां अपने भक्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण, वहां चले जाते हैं। इस तरह से भक्त भगवान के शरीर को भी जीत लेता है। भगवान के वाणी को कैसे जीत लेता है भक्त, क्योंकि भगवान हमेशा उसके भक्त, उनके भक्तों के गुणगान करते रहते हैं। और अब भगवान के मन को कैसे जीत लेता है भक्त, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम मत अन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेज्यो मनागपि। अम्बरीश महाराज के संदर्भ में भगवान नारायण दुर्वासा मुनि से ही कहते हैं कि मेरे हृदय में मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों के हृदय में मैं हूं, मैं मेरे भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता, मेरे भक्त मुझे मेरे अलावा और किसी को नहीं जानते। इस तरह से भगवान को जीत लेते हैं, भगवान के मन को, भगवान की वाणी को, भगवान के शरीर को भक्त अपने भक्ति से जीत लेते हैं। तो इस तरह से सुंदर प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक श्लोक का बड़े विस्तार में चर्चा हो सकती है, लेकिन एक ही प्रवचन में आज इस सारे प्रार्थना को समाप्त करना है। वैसे मन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप सब थके हुए हैं, कल रात बहुत लेट सोए और आज भी उपवास है और रात को लेट तक जागे रहना है। तो आगे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। हर एक श्लोक इतना सुंदर है, सभी को पढ़ना चाहिए। कम से कम आप कृष्ण बुक में आज हो सके तो दोपहर में, अगर समय मिले नहीं तो कल परसों पढ़ लीजिए। केवल प्रार्थनाओं को, श्लोक ना पढ़े के ना भी। श्रेय श्रेय श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम् असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम्। ब्रह्मा जी कहते हैं श्रेय श्रुतिं, श्रेय मतलब हमारे लिए परम कल्याण का मार्ग, श्रुति मतलब मार्ग। भक्ति है, भक्ति के अलावा और कल्याण का मार्ग मनुष्य के लिए नहीं है, है प्रभु। लेकिन उदस्य इसको जो त्याग देता है भक्ति के मार्ग को और केवल बोध लब्धे केवल इस ज्ञान मार्ग को स्वीकार करता है, उपनिषदों को पढ़ के और व्याकरण के दृष्टिकोण से शब्दों का भेद करना और न अस्ति न अस्ति भगवान ऐसे हैं ऐसे नहीं हैं, अपने मन से बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, उनके लिए क्या होता है? कृष्यन्ति तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, इनको केवल क्लेश ही क्लेश मिलता है। इसी तरह से जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने का प्रयास करते हैं और वो भी भक्ति छोड़कर, तो उनको कष्ट ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में यही बताते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही कतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप को निराकार रूप की उपासना करता है उसे क्या होता है? क्लेश अधिक तरह तेषाम, क्लेश होता है, कितना होता है? अधिक तरह, बहुत ज्यादा क्लेश होता है उसे, क्लेश के अलावा कुछ नहीं होता। इसी बात को दोहरा रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नान्यद् यथा स्थूल तुषाव घातिनाम, वो कहते हैं कि जो मेरी भक्ति आपके भक्ति मार्ग को छोड़कर केवल निराकार की उपासना करने जाता है उसे कष्ट होता है, और क्या लाभ प्राप्त होता है उसे? केवल कष्ट। ऐसा नहीं कि उसे कुछ मिलता नहीं है, निराकार की उपासना करने से अवश्य उसे मिलता है, लेकिन क्या मिलता है? कष्ट, बस केवल कष्ट लाभ ही करता है वो, और कुछ नहीं मिलता। जिस तरह से अनाज में से जब हम छिलका निकाल देते हैं और केवल खाली छिलके को फिर हम और पीटते रहें तो उसका कोई फल होगा? जब छिलके में अनाज के दाने होते हैं तब पीटेंगे तो फिर अनाज निकल आता है, छिलके भूसा जो है वो रह जाता, लेकिन केवल भूसा लेंगे और भूसे को पीटते रहेंगे सोचेंगे कि इसमें से कुछ आएगा तो आपका परिश्रम निष्फल रहेगा। उसी तरह से जो लोग भक्ति मार्ग को छोड़कर ऐसे निराकार की उपासना करते हैं उनका लाभ है केवल कष्ट। तो जो कष्ट से बचना चाहते हैं और आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें भगवान की भक्ति का मार्ग स्वीकार करना चाहिए। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है हम सबसे, हम हमारे लिए उपदेश हैं। और ब्रह्मा जी भी आगे चलकर कह रहे हैं कि केवल भक्त ही आपको इस सुंदर रूप में पहचान सकते हैं, जो अभक्त हैं ज्यादा से ज्यादा वो निराकार की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। और आगे चल के भगवान की गुणगान कर रहे हैं ब्रह्मा जी, गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य कई शिरेस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पय भूपांसवखे निहिकाधिभाषः। जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं या वैज्ञानिक हैं, ऐसा समय आ सकता है शायद जबकि वो इस सारे ब्रह्मांड के जितने भी कण हैं अणु हैं उनको गिन सके, या ऐसे भी कोई वैज्ञानिक हो सकते हैं जो सारे बर्फ के स्नो उसके कण गिन पाए, या जो सूर्य के किरणों के कण हैं उनको गिन पाए। लेकिन ये इस कार्य में भी सफल हुए, लेकिन आपके गुणों की संख्या गिनने में वो सफल नहीं हो सकते। सारे ब्रह्मांड में अणु कितने हैं? अनगिनत। सूरज के किरणों में कण कितने हैं? असंख्य। और इसके गिनने जाएंगे आप तो कितना समय लगेगा आपको? अनंत काल तक आप करते रहेंगे फिर भी नहीं कर पाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान शंकरशन ने वास्तव में ऐसा किया है, उन्होंने किया है गणना ब्रह्मांड में कितने अणु हैं, और वही शंकरशन जिनको कि ये ज्ञात है कि ब्रह्मांड में कितने अणु हैं वही संकर्षण अनादि काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, जोरदार रूप से उत्साह से करते आए हैं, लेकिन समाप्ति की कोई निशानी नहीं और ऐसे लग रहा है कि अनंत काल तक वो करते रहेंगे और भगवान का गुणगान समाप्त नहीं होगा। तो ये है भगवान के गुणगान। तो भगवान के अलग अलग रूप हैं, अनंत रूप हैं, और उनके अलग अलग रूपों में वो उनके अलग अलग तरह के गुण प्रस्तुत करते हैं। जिस तरह से एक साधारण आदमी होता है, वो घर में होता है तो एक तरह का गुण उसके प्रकट होते हैं, जब दफ्तर में होता है तो और एक प्रकार के गुण प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम सब आते हैं मंदिर में तो बिल्कुल अच्छे ठीक ठाक टिप टॉप होके आते हैं, हमारा अच्छे से अच्छा व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, क्योंकि फिर हमें सिखाया जाता है कि नम्र रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, तो कुछ भी करने के पहले 10 बार सोचते हैं। तो हमारे इस अवतार में हमारा व्यवहार, स्वभाव, हमारे गुण एक तरह के प्रकट होते हैं। लेकिन जब हम दफ्तर में जाते हैं, व्यवसाय में जाते हैं, तो फिर हमारा स्वभाव, हमारे अलग गुण प्रकट हो जाते हैं, हम प्रभु बन जाते हैं, है ना, ये लाओ ऐसा करो, तो अलग गुण वहां प्रकट होने लगते हैं। है वही व्यक्ति, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से, रोल के हिसाब से अलग अलग गुण प्रकट करा रहे हैं। और फिर घर में आते हैं, अरे क्या है ये चपाती, कैसे बना है, या तो फिर इतनी देर से क्यों आए, मालूम नहीं हम अकेले बैठे हैं घर में, दफ्तर दफ्तर क्या रखा है दफ्तर, तो अलग अलग तरह के गुण प्रकट होने लगते हैं। दफ्तर में, मंदिर में, घर में, समाज में और कहीं गए तो बिल्कुल सज्जन होकर जाना पड़ता है, नहीं तो लोग कुछ बोलेंगे। तो ठीक उसी तरह से भगवान अलग अलग जो रूप धारण करते हैं, भगवान केवल अलग अलग भाव, अलग अलग गुण प्रकट करने के लिए, प्रभु रामचंद्र जी के अवतार में जो गुणों का प्राकट्य उन्होंने किया, वो नरसिंहदेव के रूप में नहीं किया, अलग अलग गुणों को प्रकट किया भगवान ने। और भगवान के कितने अवतार हैं, कितने रूप हैं, कितने हैं, 1,00,008 अनंत रूप हैं, और हर एक रूप में अनंत गुणों को प्रकट करते हैं। और जब अनंत रूप हुए तो अनंत इंटू अनंत कितना होता है, अनंत ही होता है, क्योंकि हर एक अवतार में, हर एक रूप में अनंत गुण और अनंत रूप, तो कितने गुण हुए, अनंत ही नहीं, अनंत इंटू अनंत हुए गुण। इस तरह से ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि संकर्षण भी आपका, आपके गुणों का गणना, गुणों की गणना नहीं कर सकते हैं। और इन सारे नाना प्रकार के रूपों में से सबसे सुंदर रूप ये भगवान श्री कृष्ण का है, जिनको ब्रह्मा जी सामने देख रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो गुण है या जो गुणों को प्रकट करा रहे हैं वो और किसी भी अवतार में नहीं है। क्योंकि इस अवतार में जो गुण भगवान प्रकट करते हैं वो इतने मधुर हैं, इतने इसमें मिठास है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यही जो रूप है, इसलिए यही रूप सबको भ्रमित करता है। ब्रह्मा जी विष्णु के रूप से कभी मोहित नहीं हुए, भ्रमित नहीं हुए, कभी पढ़ा ऐसे, विष्णु चतुर्भुज विष्णु आए तो तुरंत दंडवत हो गए, कृतांजलि, प्रांजलि की मुद्रा हो गई सामने, लेकिन कृष्ण के रूप को, ग्वाल बाल के रूप को देखकर भ्रमित हो गए। तो ये सबूत है कि ये भगवान का सबसे मधुर रूप है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोहित करता है बड़े बड़े व्यक्तियों को भी। इसलिए ऐसे गोविंद या गोपाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण के गुण सुंदर श्लोक कह रहे हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रार्थना में कई सुंदर सुंदर श्लोक हैं, जिनको हमें पाठ करने चाहिए, कंठस्थ करने चाहिए। प्रभुपाद जी भी इन श्लोकों को बार बार दोहराया करते थे। और अब आकर ब्रह्मा जी भक्तों की बात कर रहे हैं, अभी तक कृष्ण की बात कर रहे थे और उनके प्राप्ति की बात, और अभी भक्तों की बात कर रहे हैं। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधं नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो, जो आपके भक्त होते हैं जब उनको कोई कष्ट आता है तो क्या करते हैं, समझते हैं कृतम विपाकम, ये मैंने किए हुए कर्मों का फल है, मैंने पिछले जन्मों में कितने पाप किए होंगे और उनका ही फल मुझे मिल रहा है, भगवान को दोष नहीं ठहरा देना है। कई बार अब भक्तों की बात तो दूर है, भक्त लोग भी ऐसा किया करते हैं कि मेरे जीवन में इतना भक्ति कर रहा हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, मैं इतना भजन करता हूं पूजा पाठ करता हूं मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम में से कितने लोगों ने ऐसे सोचा है, प्राय सभी लोग सोचते हैं ना, कम से कम हमने तो सोचा, अभी आपने नहीं सोचा होगा तो हमें नहीं मालूम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उसे सोचना चाहिए कि वास्तव में भगवान दोषी नहीं है, कर्म तो मैंने किए हैं भगवान ने नहीं किए, और मेरे किए वो कर्मों का फल अभी मिल रहा है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त को ये सोचना चाहिए कि वास्तव में मुझे और बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा है कि इतना ही मिला है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और उसका टांग टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, वो कहे मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ, मैं तो जप करता हूं, एकादशी का व्रत का पालन करता हूं, सिनेमा नहीं जाता, टीवी भी नहीं देखा, 6 महीने तक टीवी नहीं देखे मैंने और फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे भाई साहब, आपने 6 महीने टीवी नहीं देखा, इतने महीनों से जप किया, इसलिए तो केवल टांग टूट गई, नहीं तो शरीर चूर चूर होने वाला था, भस्म होने वाला था। ऐसे सोचना चाहिए भक्त को कि भगवान बड़े कृपालु हैं, थोड़े से ही छुटकारा करा देते हैं भक्त का, और सोचते हैं कि किस तरह से जल्दी इसके कर्मों को खत्म कर दें और उसको वापस भेज दें। वास्तव में भक्तों के कर्म क्षीण हो जाते हैं, जो भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं